तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
आप सभी इस तपस्या भूमि, पावन भूमि, वरदानी भूमि, प्यारी साकार बाबा की चरित्र भूमि, सुकर्म भूमि, ऐसे महान तीर्थ स्थान पर पधारे हो तो कितने भाग्यवान हो। हम कुछ भी कहें आगे से सभी को बोल देते हैं, आपने सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंस मोड भी नहीं, सब स्विच ऑफ कर दो, और जब क्लास में आते हो तो वहीं रख के आओ, अगर लेके आते हो अपने बैग्स में तो सबको साइलेंस मोड या स्विच ऑफ करके आओ, तभी आप इंजॉय कर सकोगे भट्टी को, नहीं तो बार बार ध्यान, ट्रैफिक कंट्रोल तो यहाँ बचता ही है ना, इसलिए अपने को उस समय वो ट्रैफिक कंट्रोल का जो मोड है वो एकदम क्लोज कर दीजिए 3-4 दिन के लिए। तो बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हो, समझते हैं अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली। वाह बहुत अच्छा, पहली बार कौन आया मधुबन में भट्टी करने, आप में से पहली बार जो आए हैं मधुबन में भट्टी कर, पांडव भवन में भट्टी करने, यस पहली बार मैक्सिमम वही है, और शक्तियों की तो बाहर है भाई, तो शायद हार्डली 20% दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी तो सभी बहनें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा है। तो आप सभी का इस वरदानी भूमि में सभी मधुबन निवासियों की ओर से, हमारी वरिष्ठ दादियों की ओर से, जिनके निमंत्रण पर आप यहाँ पधारे हैं, दीदियों की ओर से आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भट्टी में हम आए हैं, इसका लक्ष्य क्या है? कोई भी कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमेशा ये सोचा जाता है द पर्पस बिहाइंड इट। मान लीजिए किसी को कोई चीज, कोई नया बनाना है, कुछ करना है, तो सोचेंगे इसके पीछे इसका लक्ष्य क्या है। अब भट्टी के पीछे भी हमारा लक्ष्य क्या है? हम आए यहाँ पर योग भट्टी, इन जनरल हम कह देंगे तपस्या करने, बात तो ठीक है, हम अपनी तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ बातें स्पष्ट रहें कि जो हम विशेष समय निकाल कर अपना तन, मन, धन, ये सब एनर्जी हम लगाकर, नेचुरल है, हर एक ने, किसी ने घर से छुट्टी ली होगी, किसी ने बिजनेस से छुट्टी ली होगी, किसी ने कैसे कुछ अपने घर में प्रबंध किए होंगे, किसी को छोड़ के आए होंगे, अब टिकट्स भी आपने निकाली हैं, मन भी इधर है, तो सब एनर्जी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं ना, तो जब हम वो सब एनर्जी, वो शक्ति यूज कर रहे हैं, तो उस शक्ति का मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा हमको उसका फायदा मिलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज का फायदा तब मिलता है जब हमें उसका लक्ष्य मालूम होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। यहां तो आप में से अधिकतर भाई बहन भर्ती करने पहली बार आए हैं पांडव भवन में, लेकिन यूं तो अनेक बार भर्तियां की होंगी, आप में से बहुत पुराने पुराने हैं, लगता भी है कई तो काफी पुराने भी दिखाई देते हैं, भले हम ऐसे एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं तो सभी ब्राह्मण परिवार के, तो आपने अनेक बार अपने अपने सेवा केंद्रों पर भी भर्तियां की होंगी, है ना, और यहां भी भर्ती करने आए हैं। तो कभी कभी जब हम चलते 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 बहुत बार, कई साल हो जाते हैं, और जब बहनें कहती हैं भर्ती है, कईयों के मन में ये सवाल भी उत्पन्न होता है, हम बार बार भर्ती करते हैं, क्या उसके पीछे पर्पस होता है, भर्ती करने के पीछे उसके पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। एक बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ रोज मंदिर में जाता था, रोज। तो मंदिर में आमतौर से आप मंदिर देखेंगे, वो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के बनाए हुए होते हैं, और जितना बड़ा मंदिर होगा ऊंचा, वो ऊंचे स्थान पर होता है। तो एक बार वो अपनी मदर को पूछता है कि मंदिर बनाने वाले नीचे मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं, ये ऊपर ही मंदिर क्यों बनाते हैं, रोज इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ो, रोज उतरो, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो उसकी माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये जो सीढ़ियां चढ़ना है, ये किस बात को सिग्निफाई करता है, किस बात का प्रतीक है कि स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाना है, क्योंकि हम मंदिर में क्यों जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए, तो उसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, मींस हम, हमारा जो लेवल है, जो हमारा स्तर है, वो कदम बाई कदम ऊंचा होता रहता है, और तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जब तक हम उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो वास्तव में ये जो भक्तियां हम करते हैं, और उसने एक और बात कही कि ये जो उच्च स्तर पर पहुंचना है, ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पर आप छलांग लगा के चले जाएंगे, ये कदम का बाई कदम आपको ऊपर जाना होता है। इसी प्रकार ये जो हमारा पुरुषार्थ है, हम ज्ञान पथ पर आए और ज्ञान पथ पर हम चल रहे हैं, तो इस ज्ञान पथ पर भी हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि ये जो आगे बढ़ना है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि एकदम से छलांग लगा के आगे बढ़ जाएंगे, हम कदम बाई कदम आगे बढ़ते हैं, और ये जो भट्टियां हैं, ये हमारे आंतरिक स्तर को, जो हमारा इनर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, एक है आउटर लेवल बाहरी स्तर, और एक है हमारा आंतरिक स्तर, उस आंतरिक स्तर को उच्च बनाने में बहुत मदद करती हैं। इसीलिए इन भट्टियों का आयोजन समय प्रति समय हमारे पास होता ही रहता है। तो हमें अपनी उन्नति करनी है, तो भट्टी का मतलब क्या होता है। मैं सोच रही थी कि बाबा ने भट्टी शब्द क्यों कहा, बाबा ने भट्टी शब्द क्यों कहा, आप में से कोई बता सकता है बाबा ने भट्टी शब्द ही क्यों कहा। दुनिया में अगर जैसे नए नए जब भाई बहन आते हैं ना, और जब पहली बार वो सेंटरों पे, सेवा केंद्रों पे भर्ती करने आते हैं, योग भर्ती है, तो उनके मन में होता है वो कौन सी भर्ती है, क्योंकि भर्ती तो किसको कहते हैं, वो जब भट्टी जलाई जाती है जिसमें कोयले होते हैं ये सब होता है, बहुत तेज अग्नि होती है वो भट्टी होती ना, तो बाबा ने इसको योग भट्टी क्यों कहा? क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार के जो मेरे संस्कार हैं, पुरानी से पुरानी चीज अगर उसको खत्म करना है, हार्ड से हार्ड चीज, कितनी भी वो हार्ड हो या कितनी भी जबरदस्त स्ट्रांग चीज हो, वो उसको अगर हमें उसका रूप परिवर्तित करना है तो उसके लिए अग्नि की ही आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे हरेक को मेल्ट करने का, जैसे आप देखिए मेटल्स होते हैं, आयरन है, लोहा है, गोल्ड है वो भी मेटल ही है, सिल्वर है वो भी मेटल ही है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन हर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो किस पॉइंट पर जाकर, किस डिग्री पर जाकर वो पिघलेगा, वो अलग अलग होता है। ऐसे ही ये जो योग भट्टी में कुछ हमारे ऐसे संस्कार जो ऊपरी सतह पे हैं और कुछ हमारे संस्कार जो डीप रूटेड हैं, बहुत गहरे हैं, वो तभी खत्म होंगे जब हम योग भट्टी के अनुभव में जाएंगे। इसलिए बाबा ने, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे ये योग अग्नि है, तो योग अग्नि यानी भट्टी में जब हम पढ़ते हैं, योग अग्नि का रूप ले लेता है, उस अग्नि में मेरे विकर्म दग्ध होते हैं, उस अग्नि से मेरे संस्कारों में परिवर्तन आता है, इसलिए बाबा ने इसको योग भट्टी नाम दिया। तो वास्तव में देखा जाए भट्टी का पर्पस क्या है, पहली बात बीइंग फोकस्ड, यानी मुझे अपने आप को एक टिक, एकाग्र, एक चित, एकदम अपने फोकस को, अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है। किस बात पर? अब बीइंग फोकस्ड वास्तव में देखा जाए, हम ये समझते हैं कि भट्टी माना मी टाइम, पर्सनल टाइम, जो भट्टी है ये टाइम कौन सा है? मी टाइम है, मेरे अपने लिए टाइम है। घरों में रहते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, अमृत वेले उठते हैं, यथाशक्ति पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं, वहां हमारी अपनी अपनी जवाबदारियां हैं, उन जवाबदारियों को हम पूरा भी करते हैं, लेकिन यहां हम बिल्कुल उन सब जवाबदारियों से मुक्त हैं। और ये मुझे स्पेशल टाइम मिला है, ये मेरा मी टाइम है, तो मेरी मन और बुद्धि कहीं भी भटके नहीं। मन और बुद्धि जो है वो एक ऐसी चीज है, कहीं भी बैठे होंगे किधर भी जा सकता है ना, वो तो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, फिजिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मन तो किधर भी भाग जाएगा। तो हम ये ध्यान रखें कि मेरा मन और बुद्धि कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, किधर भी वॉन्डर नहीं करे, कहीं भी भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए, बुद्धि और मन की एकाग्रता बनी रहे। और मन कहां जाता है? चार मॉन्क्स थे, उन चारों ने मिलकर तय किया कि हमें जो है अभी 15 दिन के लिए बिल्कुल मौन में रहना है, मौन साधना करनी है। तो दिन निश्चित किया, उन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने पर उन्होंने मौन साधना, अपनी वो दिन आया, अपनी मौन साधना शुरू की। और उसके बाद उन्होंने जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, क्योंकि उनको मौन साधना 15 दिन तक कंटिन्यूअस करनी थी, तो उन्होंने कैंडल जलाई और अपनी मौन साधना शुरू कर दी। अब मौन साधना हुई, कैंडल जल रही थी, मोमबत्ती तो वो जल रही थी, जलते जलते धीरे 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 क्या हुआ कि मोमबत्ती वो खत्म होने पे आई, जब मोमबत्ती थोड़ी खत्म होने लगती तो क्या होता है, उसका जो फ्लेम होता है वो फ्लिकर करता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, हिलता है वो थोड़ा। अब उसमें से एक मोंग का ध्यान जो है उस पर गया, वो जो क्योंकि वो ऐसे 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 हिल रही थी उसकी फ्लेम, तो जैसे उस पर ध्यान गया और इतने में मोमबत्ती बुझ गई और वो बोल पड़ा, लो ये बुझ गई। दूसरा बोलता है, तुमको मालूम नहीं है हमको मौन साधना करनी है। इतने में तीसरा नाराज होके कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, हम तो मौन साधना में है। और चौथा बोला, वाओ मैं ही चुप रहा केवल। तो अगर आप चारों को देखेंगे, ध्यान कहाँ गया, वो फोकस्ड थे नहीं ना। अब सारा दिन तो आप यहाँ नहीं बैठे रहेंगे ना, ये बैठ के आप योग कर रहे हैं, सारा दिन तो नहीं होंगे, भोजन भी करेंगे, मिलेंगे भी, अपनी रूटीन्स में भी जाएंगे जो हमारा अपने पर्सनल रूटीन्स होते हैं। लेकिन मैं फोकस्ड रहूं, मेरा ध्यान ना भटके। देखिए पहला जो है उसका ध्यान वॉन्डर, भटका कहां, उस मोमबत्ती की तरफ। अब जो दूसरा था वो क्या हुआ, वो उसको याद दिला रहा है नियम का। हम भी क्या करते हैं, दूसरों को नियमों की संयम की याद दिलाते हैं लेकिन खुद उस पर चलते नहीं है। भटका ना ध्यान, अगर ध्यान देना तो किसको देना है, अपने पर। और तीसरा क्या हुआ, तीसरे का क्या गया, तीसरे को एंगर, उसको नाराजगी हुई, इरिटेट होकर उसने बोला ना कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी एक हमारे रास्ते में डिस्ट्रैक्शन है, रुकावट है हमारी साधना में। और चौथे को क्या, चौथे का क्या हुआ, उसको आया ईगो, अहंकार, वाह मैं ही चुप रहा। तो ये जो चीजें भटकाने वाली हैं, भले हम यहां बैठे हैं पांडव भवन में हैं, जहां का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चार्ज्ड है, एनर्जाइज्ड है, बहुत शक्तिशाली है, इस एटमॉस्फेयर का हम आनंद लें, लेकिन फिर भी मन को तो कोई रोक नहीं है। इसीलिए मन को जहां तक हो सके फोकस करके रखें, अपने पर ध्यान, दूसरों पर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एनालिसिस करो, अपने अपना स्वयं का विश्लेषण करो, आत्मचिंतन करो, अपना डेवलपमेंट करो, अपनी उन्नति करो, अपने आप को देखो। देखना है तो मुझे खुद को, मुझे दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ध्यान अपने पर रहे, मेरा जो रूम में, जो मेरे साथ रूममेट है, होंगे ना कहीं चार रहे होंगे, कहीं आठ रहे होंगे, कहीं दो होंगे, कहीं तीन होंगे, सब अलग अलग तरीके से रहे पड़े हैं, जैसी जैसी सबको सुविधा मिली। तो मेरा रूममेट भी जो है ना, वो कुछ भी कर रहा है लेकिन मेरा उस पर ध्यान ना जाए, मेरा अपने पर ध्यान जाए। और अगर ध्यान खिंचवाना भी है हमें अपना कल्याण की दृष्टि से, तो इतनी धीमी आवाज में बात करें कि उसको ही सुनाई दे। ये हमारा है बीइंग फोकस्ड, कि कहीं मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके। याद रखना, ये मुझे मेरा पर्सनल टाइम मिला है मेरी उन्नति के लिए, इसलिए मुझे अपने आप को, अपने पर ध्यान रखना है, ना कि मुझे दूसरों को देखना है। वैसे भी देखो हमें एक आदत पड़ गई है, देखो एक होता है मिरर है ना, वो देखने का साधन है ना, और एक होती है खिड़की, विंडो। मिरर में क्या होता है, हम खुद दिखाई देते हैं, और विंडो में क्या होता है, दूसरे दिखाई देते हैं। हमको आदत कौन सी पड़ी है देखने की ज्यादा, मिरर में देखने की या विंडो में देखने की, विंडो से देखने की। तो इसलिए विंडो से देखना बंद करो, मिरर में स्वयं को, अपने आप को देखो, तो ये है पहला लक्ष्य ध्यान रखना कि मुझे अपने आप को फोकस्ड रखना है। दूसरी चीज भक्ति की जो है वो है बीइंग कनेक्टेड। हम कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, किसके साथ, किसके साथ कनेक्ट करेंगे अपने आप को, हमारा पर्पस क्या है भक्ति में आने का, शक्ति इकट्ठी करना, अपने अंदर इतना बल भर के जाएं, हमारी इनर स्ट्रेंथ इतनी एक्यूमुलेट हो जाए, अंदर ही अंदर हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए जो जैसे कि हमें बहुत लंबे काल के लिए आत्मा को जैसे भोजन मिल गया, या यूं कहें कुछ एक हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ गया। ऐसी शक्ति हम इकट्ठी करें अपने पास। और वो शक्ति कहां से मिलेगी, शक्ति का स्रोत कौन है, शिव बाबा है, ठीक है, तो मुझे शिव बाबा से कनेक्ट रहना होगा। तो अब बीइंग कनेक्टेड के लिए मैं कुछ भी करूं, क्या भी करूं, लेकिन मुझे बाबा के साथ रहना है, कदम कदम पर बाबा मेरे साथ रहे। मैं जो भी कर रही हूं, हम उठ रहे हैं तो भी बाबा साथ में है, अमृत वेला कर रहे हैं तो भी बाबा साथ में है। एक बात ध्यान रखना, हम इतने प्यार से यहां आते हैं, बैठते हैं योग करने, लेकिन कईयों को आदत पड़ गई है आंख बंद हो ही जाती है। देखो बाबा कौन है, वो हमें कनेक्शन का मतलब क्या होता है, बाबा से मिलना और शक्ति का अपने अंदर संचित करना, ठीक है, उसको इकट्ठा करना। अब बाबा मिलने आए और आपकी आंख बंद हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि जब भी मुझे बैठना है अलर्ट होके बैठना है, एक्टिव होके बैठना है, बहुत डल होके नहीं बैठो। हमारा एक आदत बन गई, कैजुअल बैठते हैं हम लोग, जैसे भक्ति में नहीं आदत थी तो चलो रोज भगवान को भोग लगाया, रोज आरती गाली, रोज पूजा कर ली, दिया बाती कर ली, जोत जगा ली। अब ऐसे यहाँ भी ना कभी कभी हमको आदत पड़ जाती है, यहाँ आते हैं बैठते हैं, हम देखते हैं रेड लाइट है, हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है, वैसे ही चारों तरफ शांति है, हल्का हल्का म्यूजिक हो और रेड लाइट हल्की जल रही हो तो वैसे ही दुनिया में तो कहीं ऐसा रिलैक्सेशन मिलता नहीं है, वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं, इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक भाई आते हैं, मैं बात सुनाती हूँ, तो मैंने उनको पूछा, वो कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स करने के बाद बहुत समय से शिवानी बन को सुनते हैं वो, और उनको लगा कि अभी मैं कुछ कोर्स करके आऊं, तो जब कोर्स कराने बैठे कहते ये तो सब पता है, अनुभव कराओ। ठीक है चलो अनुभव कराते हैं, अनुभव कराया, फिर उसको मेडिटेशन रूम में बिठाया, तो मैंने नेक्स्ट से पूछा कि आपको अनुभव क्या हुआ, तो कहने लगे कि बस मैं बैठा था, अच्छा लगा था और वहां ड्राउजीनेस होने लगी, बट इट वॉज गुड। ड्राउजीनेस है, नींद आ रही है, लेकिन उनका कहना क्या, बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा एटमॉस्फेयर कहीं मिलता नहीं ना, कहीं भी चले जाओ ऐसी शांति तो कहीं नहीं मिलेगी ना, लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं और हम बाबा के बच्चों ने लक्ष्य क्या साधा है कि हमें तो परिवर्तन करना है, और पहला परिवर्तन स्वयं का है, बाद में दूसरों का परिवर्तन है। तो इसीलिए जो बीइंग कनेक्टेड है, माना हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहें, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, जैसे बाबा मेरे साथ है, बस और कुछ ना ख्याल में आए लेकिन बाबा ही ख्याल में आए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है पीछे वाले? हो सकता है? हो सकता है? खाएंगे तो पक्का? या एक ही गिट्टी बाबा को खिलाएंगे फिर अपने आप ही खा लेंगे? क्या करेंगे? बाबा के साथ खाएंगे? ये हो सकता है ना? तो इसका बात ध्यान रखना कि मुझे कनेक्टेड रहना है बाबा के साथ। तीसरी बात है, भक्ति का लक्ष्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। हमारे हरेक के जीवन में, हम जो भी हैं, हरेक में कोई ना कोई स्टिल अभी भी कोई ऐसा नेगेटिव कमजोर संस्कार है ना? हरेक में है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, देखिए अगर हम परिपूर्ण हो गए होते तो फिर यहां होते ही नहीं, फिर भक्ति में आते ही नहीं। हमारे में भी है, अभी परिपूर्ण तो हुए नहीं, संपूर्ण तो बने नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई डिफेक्ट, हाँ, कोई ऐसी वीकनेस, कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी नेगेटिविटी, वो हमारे अंदर है। तो अभी मैं आपको 2-3 मिनट देती हूं, ठीक है, फाइंड आउट कि मेरे में ऐसा कौन सा संस्कार है, ऐसी कौन सी आदत है, या ऐसी कौन सी कमजोरी है, या कोई ऐसी कमी है जो मेरे इस पुरुषार्थ के मार्ग में रुकावट बनती है। उसको राइट डाउन करो, ठीक है। आपको अगर एकदम से समझ में नहीं आता, आप 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि भक्ति का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करना, और परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। सभी अपने साथ नोटबुक और पेन तो जरूर लाए होंगे, लाए हैं ना सभी अपने साथ, और अगर आज नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से जरूर अपने पास डायरी पेन जरूर लेकर आओ, क्योंकि समथिंग और दी अदर मुझे नोट जरूर करना है। और कोई ऐसा है जिनको समझते हैं हम ऐसे ही हैं, तो वो अपने आप को ऐसे ही देखो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, स्वयं ही स्वयं को देखो। क्या देखो? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी कमजोरी है, ऐसी कौन सा मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी पुरानी आदत है जो अभी तक भी निकली नहीं है। जैसे कईयों को बहुत जल्दी से चिड़चिड़ापन हो जाता है, कई बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कईयों का क्या है, बहुत बहुत ही कोमल स्वभाव के, डेलिकेट होते हैं ना, जैसे वो बाबा हमेशा मिसाल देते हैं ना इसका, छुई मुई का, है ना, बिल्कुल छुई मुई जैसे ही होते हैं। कईयों को क्या होता है कि सब मेरी बात सुने, नहीं सुने तो उनको खराब लग जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी 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 बारीक आदतें हैं, सूक्ष्म हैं ये, बहुत हैं छोटी छोटी बातें। मोटी मोटी बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। तो वो छोटी छोटी बातों में से ऐसी कौन सी बात है, आप 2-3 पहले लिखिए, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। ओके, मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, जस्ट फाइंड आउट। सोचो कौन सी मेरे अंदर कमी है। मान लीजिए बच्चे सुनते नहीं हैं, आपको गुस्सा आता है, वो सुनते क्यों नहीं है, ये भी तो एक आदत है ना हमारे अंदर। तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं। एक कभी होता है पोजेसिवनेस, कईयों को बहुत पोजेसिवनेस होती है कि बस ये मेरी बात माने, किसी का नहीं सुने, ऐसे भी होता है। ऐसे बहुत सारी हैं, आप उनको थोड़ा रिकॉल करो और अपने आप को चेक करो। एक ऐसी कॉमन आदत जो मुझे बहुत परेशान करती है, या मेरे इस आध्यात्मिक पथ पर विघ्न बनती है, मेरे पुरुषार्थ में बाधा है। ऐसी कोई बात जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती है, कईयों को अभी भी बहुत जोर से बोलने की आदत होती है। वैसे सब अच्छा है, लेकिन वो आदत पड़ी है जोर से बोलने की। सबने लिखा लिखा, कईयों के पास नहीं है, हाँ नोटबुक पेन नहीं है, ठीक है। किस किस ने लिखा जरा हाथ खड़ा करें तो पता लगेगा। अच्छा, आपने नहीं लिखा, अभी लिख लो, लिखा ठीक है। अच्छा, कितने जितने भी दो तीन चार कुछ भी लिखा होगा उसमें से एक ढूंढ लो, कौन सा, जस्ट वन, उसको अंडरलाइन कर लो। उस एक को ठीक है लगा लिया, किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने लिए है। आज पहला दिन है आपकी भर्ती का, ठीक है। और आज सोने से पहले बाबा के कमरे में जाएंगे आप लोग, कोई कभी जाएगा कोई कभी जाएगा, आगे पीछे जब भी जाएंगे, तो आज बाबा के सामने एक संकल्प लेना कि मुझे इस भर्ती से अपने आप को इस पर्टिकुलर, जो मेरे अंदर कोई विशेष ऐसी बात है उसका मुझे परिवर्तन करना है, ठीक है। एग्रीड, मैं किसी से भी नहीं पूछूंगी, लेकिन आपको स्वयं अपना ही टीचर अपने आप बनना है। देखिए, अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं, बीच में बाबा के एक दिन मुरली में आया था कि बच्चे बाबा जो है सबको सुधारने आए हैं, करेक्शन करते हैं बाबा। अब देखिए, बाबा तो हमारे अंदर रोज करेक्शन कराते रहते हैं, और हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो आप सोचिए हम दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं। ज्ञान केवल सुनाने के लिए नहीं है, ज्ञान स्वयं में धारण करने के लिए है। पहले ज्ञान मेरे लिए है, फिर दूसरों के लिए है ना। तो इसीलिए आज हम भर्ती में सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, मेरी कोई ऐसी पुरानी आदत जो अब तक भी छूटी नहीं है, ऐसी कोई कमी कमजोरी, वो मुझे यहाँ इस यहाँ पर पांडव भवन में, इस भट्टी में, बाबा के इस घर में जहाँ बहुत शक्ति प्राप्त होती है, वहां से इसको मुझे परिवर्तन करके जाना है। आज का दिन और लास्ट दिन 4 तारीख का अमृत वेले, आप अपने आप को अमृत वेले के बाद चेक करना कि मेरे में इतनी शक्ति एक्यूमुलेट हुई, इतनी ताकत आई कि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं, ये देखना। तो ये तीसरा आपका ध्यान रहेगा कि मुझे अपने में परिवर्तन लाना है। और चौथी बात है, भक्ति किसके लिए होती है, हाँ, डेकोरेशन है ना, किसका श्रृंगार, बाबा क्या कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं, मैं बच्चे मैं आत्मा का श्रृंगार करने आया हूँ। आज आपको जब आप आए यहाँ पर तो आने से ही आपको क्या दिया गया, तिलक। और तिलक किस चीज का सूचक है, किस चीज की पहचान, हाँ आत्मिक स्मृति, बस, और किस चीज का है, विजय, राइट, एक एक करके बोलो, और किसका सूचक है, एक आत्मिक स्मृति, दूसरा विजय, तीसरा बोलो, हाँ प्यूरिटी, अच्छा और राज्य अधिकारी, और बोलिए तिलक किसका सूचक है? हाथ खड़ा करो तो पूछू मैं। हाँ हाँ बोलो। सुहाग की निशानी, तीसरा। हाँ और आपने क्या बोला? सुहाग बोला, सेम। अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा मन बुद्धि तिलक, ये भी ठीक है, लेकिन तिलक और किस चीज का? हाँ बोलो। राज तिलक है, अच्छा राज तिलक। और बोलिए। विजय का है, आत्मिक स्मृति का है, सुहाग का है, और हाँ क्या बोला आपने बहन? राज्य अधिकारी, वो हो गया। और स्वराज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी, राज तिलक, वो सब हो गया। और किसकी निशानी है? जन्म सिद्ध अधिकार है। और किसकी निशानी है तिलक? भाग्य की। विजय की निशानी है ना, भाग्य की निशानी है। और किसकी निशानी है तिलक? खुशी की। तिलक किसकी निशानी है? खुशी की निशानी है ना, तभी तो तिलक लगाते हैं। और तिलक क्या? श्रृंगार। हाँ बोलिए। हाँ वो विजय हो गया है ना, तो तिलक क्या? श्रृंगार है ना, श्रृंगार है ना। तो बाबा भी, जब हमें बाबा ने हमें यहाँ बुलाया तो बाबा क्या करते हैं? हमारा श्रृंगार करते हैं ना, श्रृंगार करते हैं ना। तो बाबा क्या करते हैं? हमारा श्रृंगार करते हैं। तो याद रखना, भट्टी में हमारा क्या हो रहा है? श्रृंगार हो रहा है। बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं? सजी सजाई मूरत, ऐसा बाबा हमको देखना चाहते हैं। तो हमें अपने आप को कैसा तैयार करना है? जैसे कि हम सजी सजाई मूरत हैं, हम बाबा की सजनी हैं। बाबा हम सबको उस सजी सजाई मूरत में, और विजय का तिलक बाबा ने हमको लगा दिया है। हम सभी आत्मिक स्मृति का तिलक लगाए हुए हैं, बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये तिलक हमेशा लगा रहे। बाबा की मस्तक मणि है तिलक, माना विजयी। मैं कौन सी आत्मा हूँ? विजयी आत्मा। एंड लास्टली, भक्ति का लक्ष्य क्या है? वो है सेलिब्रेशन। भक्ति सेलिब्रेशन है। आमतौर से हम कोई त्योहार सेलिब्रेशन मनाते हैं, लेकिन भक्ति भी वास्तव में देखा जाए अपने आप में एक प्रकार का सेलिब्रेशन है। लेकिन वो सेलिब्रेशन कौन सा है? जैसे आप लोग कोई त्योहार मनाते हैं, अभी जैसे नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, आप कितना धूमधाम से मनाते हैं। डोंट यू थिंक कि भट्टी जो है ये भी एक प्रकार का महोत्सव है, एक प्रकार की सेलिब्रेशन है? संस्कारों का, संस्कारों का मिलन करने की राह है ये, आत्मा का परमात्मा के साथ। तो ये सेलिब्रेशन है किस चीज के? ये सेलिब्रेशन है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन बनाने की। ये सेलिब्रेशन आंतरिक सेलिब्रेशन है, आनंद है ये। इसीलिए आनंद बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भक्ति में भी कहा गया आनंद आनंद परमानंद। खुशी तो बहुत छोटी चीज है, आनंद उससे कहीं ऊंची चीज है। उस आनंद विभोर में हम बह जाएं, उसमें हम चले जाएं। तो सभी को, जैसे आपको बताया गया कि हमें किस चीज का आनंद लेना है, हमें इस भट्टी का आनंद लेना है। ऐसे नहीं कि हम भट्टी करने आए हैं, हम बड़े एकदम से सीरियस, कोई इतने सीरियस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सीरियस होने की जरूरत नहीं है हमें, बाबा के साथ उस मिलन को हम इंजॉय करें। ये जो हमारे पास दिन है, जो हम यहाँ पर आए हैं, विशेष हम भक्ति करने आए हैं, हम उसको इंजॉय करें। भले हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वो जो आनंद है, वो आनंद अपने आप में एक न्यारा आनंद है। उस आनंद का हम अनुभव करेंगे तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है। वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो भट्टी है, इसमें हम स्वयं को अंतर्मुक्ता की गुफा में ले जाएं, उसका अभ्यास करें। अंतर्मुक्ता, और वो अंतर्मुक्ता क्या है? अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाना। जैसे ऋषि मुनि तपस्वी वो लोग क्या करते हैं, वो जंगलों में जाके, आजकल तो बात अलग है कि सब शहरों में आ गए हैं, पहले लोग कहाँ तपस्या किया करते थे, शहर से दूर बाहर कोई ऐसे स्थान पर। जैसे मुझे याद आता है बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहा करते थे, सुनते हम भी सुनते हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे यहाँ बहुत जगह है, मुरली के बाद उसके बाद छत छत पर चले जाओ, एकांत में चले जाओ, और यहाँ तो बहुत जगह है, वहां जाके आनंद लो, अनुभव करो, इन सब चीजों का आनंद लो, ये बाबा कहा करते थे। तो ऐसे ही हमें यहाँ टाइम मिला है। किस चीज का हमें टाइम मिला है? कि हम अपने समय को यूटिलाइज करें। हमको जैसे समय मिला, हम बाबा के साथ रूहानी करें, बाबा के साथ बात करें, हम अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाएं, हम एकदम उस बाबा से बहुत शक्ति लें। ये अंतर्मुक्ता की बहुत आवश्यकता है। ये अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना, तो ये हो सकता है हम जितने दिन यहाँ पर रहेंगे उतना दिन हम ये अभ्यास कर सकते। मैं देख रही थी कि आप जैसे आए, बहुत सारी भाई बहन आप सब जैसे जैसे आप लोग आ रहे थे, हम देख रहे थे आप बहुत सारी भाई बहन आप में से कोई शांति यहाँ पर अपना जो है शांति स्तंभ में आप लोग वहाँ बैठे थे, कोई कहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी आप जो आए हैं इस लक्ष्य से लेके कि हम यहाँ भट्टी करनी है, तो उस लक्ष्य को हमें पूर्ण करना है। ऐसा नहीं कि केवल जब हम क्लास में हैं तब हमने किया, लेकिन हम इस लक्ष्य को अवश्य पूरा करें, ध्यान रखें, क्योंकि हम विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं समय निकाल के, तो हमें ये भट्टी जो है पूर्ण रीति से इसको अच्छे तरीके से हमें करना है। बाकी आप सबको मालूम है कि जब आप यहाँ भट्टी करेंगे तो बहुत से हमारे अनुभवी बहने भाई आपके पास बहुत सारे क्लासेस होंगे, आप उन क्लासेस को जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे आप उनका आनंद भी लेते रहेंगे, उनको आप अटेंड भी करेंगे, और जैसे जैसे आपका प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा। आज भी हमारे पास बहुत सारे आपके लिए जो सूचनाएं हैं वो आप सबको बतानी है कि आपको क्या क्या करना है। इससे पहले मैं कुछ बताऊं तो मैं आपसे को कहना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ सभी को अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था मिल गई होगी, सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर प्रकार की सुविधा मिली होगी। तो बहुत सारे डायरेक्शंस भी हैं जो आपको सुनाने हैं, और अभी भी हमारे कुछ बातें आई हैं, तो मैं आपको कुछ एक बातें बता देती हूँ और फिर उसके बाद आगे हम करेंगे। इससे मैं आपको बात सुना रही थी कि जब हम लोग भट्टी में आते हैं, हम भट्टी क्यों करते हैं, बार बार भट्टियां भी क्यों करते हैं, ताकि हमारी प्रोग्रेस जो है उसी प्रकार से होती रहे। तो मुझे एक बात याद आई उसके अंदर, जैसे कहते हैं कि हम मन में क्या सोचते हैं, हम अपने पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। पुरुषार्थ मेरा जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना हमारा पद ऊंचा होगा। इसलिए मन में ये आता है कि जितना मैंने पुरुषार्थ किया और अच्छा, लेकिन उससे और भी आगे बढ़ना है। जैसे किसी ने कहा है कि थोड़ा सा अभी और निखर जाऊं, थोड़ा सा अभी और निखर जाऊं, ऐसा मैंने ठानी है। ए वक्त थोड़ा ठहर जा, ए वक्त थोड़ा ठहर जा, मैंने हार कहां मानी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब ने ये निश्चित कर लिया है कि हमें नई दुनिया की स्थापना करनी है और बाबा ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया है। और यदि बाबा ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया है तो पहले मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। जब स्वयं का परिवर्तन होगा तभी हम दूसरों को परिवर्तित कर सकेंगे।